ओम शांति। आपने राजयोग अभ्यास के पिछले सत्रों में स्व की सत्य पहचान, परमात्मा का सत्य परिचय और राजयोग अभ्यास की विधि, इसके बारे में समझा और अनुभव भी किया। आज राजयोग अभ्यास से हमें किन गुणों और शक्तियों की प्राप्ति होती है, उस पर हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं, यूं तो मनुष्य भी जीते हैं और पशु भी जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन जीने में अंतर है। मनुष्य बुद्धिवान है, विवेकशील है, वो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, लेकिन पशु अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। वो खाते हैं, पीते हैं, रचना रचते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन अगर मनुष्य भी ऐसा ही जीवन जीता है तो ये उसके जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। बाइबल में कहा गया, भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा सर्वगुण संपन्न बनाया। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को भूले, परमात्मा को भूले, तो वो कर्मों से गिरते गए और वर्तमान स्थिति तक, जिसे हम कलयुग कहते हैं, इस कलयुग की स्थिति तक पहुंच गए। और काल चक्र के विषय में आपने सुना कि कलयुग के अंतिम समय पर अपने किए हुए वायदे के अनुसार कि जब जब संसार में धर्म की ग्लानी होती है, तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। वो पुनः हमें राजयोग की शिक्षा के द्वारा धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ बनाते हैं और मानव पुनः देव पद को प्राप्त करता है। कई भाई बहने हमसे पूछते हैं कि बहन जी, हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो क्या हमें कोई विशेष सिद्धियां प्राप्त होंगी या जीवन में कोई चमत्कार होंगे? लेकिन हम सुनते हैं कई साधु पुरुष या महात्मा, वो इस तरह की सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। वो कोई मंत्र जपते हैं और जिस वस्तु की इच्छा रखते हैं वो उन्हें हासिल मिलती है। कभी कभी वो किसी को, यदि कोई रोगी है, कष्ट में है, तो कुछ भभूत भी देते हैं और कहते हैं कि आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी या आपका कष्ट दूर हो जाएगा। और कई बार सचमुच ऐसा होता भी है, लेकिन ये उनकी गहरी आस्था है, उसके परिणाम स्वरूप ये प्राप्ति होती है। लेकिन सचमुच कोई भभूत किसी का रोग दूर नहीं कर सकती। और इस प्रकार की सिद्धियों से उनको नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता, या हम कहेंगे उससे समाज का कोई कल्याण नहीं होता है। इसीलिए जो भी सच्चे संत हुए, उन्होंने इस प्रकार की अल्पकाल की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और बातों ही बातों में उन्होंने अपनी सिद्धियों के बारे में उन्हें बताना शुरू किया। कहा, आपके आश्रम के पास जो नदी बह रही है, इस नदी को मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो स्वामी रामतीर्थ ने उससे पूछा कि अच्छा, आपको इन सिद्धियों को प्राप्त करने में कितना समय लगा? तो उसने कहा, लगभग 12 वर्ष का समय मुझे लगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़े समय के बाद उनका दूध वाला जो नदी पार गांव से आता था वो आया। तो उन्होंने सन्यासी के सामने ही जानबूझकर उससे पूछा, तुमने कितने पैसे में नदी पार की? तो उसने कहा, एक पैसे में। उस जमाने में एक पैसा दो पैसा हुआ करता था। तो उन्होंने सन्यासी को कहा कि देखो, जो काम मेरा दूध वाला एक पैसे में कर सकता है, उस काम को करने में आपने 12 साल लगा दिए। आपने सन्यास क्यों किया है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपने सन्यास किया है, और अगर आपने सचमुच सच्ची लगन से वो पुरुषार्थ किया होता तो अभी तक आप परमात्मा के समीप पहुंचे होते। तो इसलिए जो भी सच्चे संत हुए, उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन जीवन ही चमत्कारिक बन जाता है। राजयोग के अभ्यास से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, जिससे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। हमारे जीवन में जो भी कमजोरियां हैं, उन्हें हम कहेंगे वो अंधकार के समान हैं। जैसे अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, अंधकार प्रकाश का अभाव है। यदि प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय होता है तो रात्रि स्वतः समाप्त हो जाती है, ऐसे ही यदि हम गुणों और शक्तियों का विकास करते हैं तो हमारी कमजोरियां विकार स्वतः दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन कमजोरियों का कोई स्रोत नहीं है और ये शक्तियों का स्रोत परमात्मा है। परमात्मा से जब हमारा योग होता है, संबंध होता है, तो इसकी पुनः प्राप्ति हमें अपने जीवन में होने लगती है। आज घर घर की स्थिति नरक के समान है। क्यों हम कहते हैं घर घर की स्थिति नरक के समान है? क्योंकि हर घर में आज स्वार्थ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, नफरत है, बदले की भावना है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि आज घर घर में रामायण और महाभारत चलती है, क्योंकि हमारे ये दो शास्त्र मनुष्य की दो कमियों पर बने हुए हैं। रामायण शास्त्र ईर्ष्या की कहानी है। कहते हैं जब राजा दशरथ ने घोषणा की कि राम को राज तिलक होगा, तो जो केकई की दासी मंथरा थी, उसे ईर्ष्या होने लगी कि क्यों कौशल्या का बेटा राम राजा हो, रानी केकई का बेटा भरत राजा होना चाहिए, क्योंकि रानी केकई ने ही राजा दशरथ को समय पर मदद की थी, उसके जीवन की रक्षा की थी, और राजा ने उसे दो वर दिए हैं, ये सही समय है, उसे वो वर मांग लेने चाहिए। तो उसने वही बात केकई को सुनाई। हालांकि केकई के मन में ऐसा नहीं था, लेकिन अपनी ईर्ष्या के कारण उसने केकई के मन में वो सब बातें भरी, और परिणाम स्वरूप राम को वनवास हुआ और भरत को राज तिलक की बात उसने कही, और उसी वनवास से पूरी रामायण की कहानी बनी है। और यदि हम महाभारत की कहानी देखते हैं तो महाभारत किसकी कहानी है? कहते हैं द्रौपदी के दो शब्दों ने महाभारत, वैसे तो भाई भाई के द्वेष की कहानी है। हमेशा ही कौरवों और पांडवों में जीवन भर द्वेष बना रहा और वो तब अधिक हो गया जब द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया, जब दुर्योधन उनका भवन देखने के लिए इंद्रप्रस्थ में गया तो वहां पर एक स्थान ऐसा था जहां पर उसे ये समझ में नहीं आया कि ये पानी है या फर्श है। वास्तव में वो पानी था लेकिन दिखता फर्श था और उसने पैर रखा और उसके कपड़े गीले हुए और द्रौपदी झरोखे से ये दृश्य देख रही थी और उसने मजाक में हंसी में कह दिया अंधे की औलाद अंधे। उसको इतना अपमान महसूस हुआ कि उसी समय उसने मन में ठान लिया कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा और उसने बहुत चालाकी से पांडवों को जुआ खेलने के लिए राजी किया और उनको धोखे से जुए में हराया, द्रौपदी से अपमान का बदला लिया, पांडवों को वनवास हुआ और वनवास के बाद जब वो लौटे तो कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, राज्य की तो बात ही नहीं है। और उसी बात को लेकर के महाभारत का युद्ध हुआ और पूरे कुल का विनाश हुआ। तो आज घर घर में महाभारत चलती है, वो तो एक बार कहा उसने, हम तो कितनी बार ऐसे शब्द बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं या किसी को दुख देते हैं। और ये जो कमियां हैं, कौन सी शक्तियों का अभाव है जिससे आज घर घर नरक है, और उन्हीं शक्तियों का अगर विकास होगा तो वही घर स्वर्ग बन जाएगा। तो राज्ययोग के द्वारा विशेष अष्ट शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, उसमें विशेष है सहन करने की शक्ति। आज जो सबसे ज्यादा कमी है वो है सहन शक्ति की कमी, कि किसी की एक छोटी बात, किसी ने हमें छोटी बात कही तो हम सहन नहीं कर सकते, एक कहा तो हम उसका जवाब दो में देंगे, दो कहा तो हम चार कहेंगे, चार कहा तो हम आठ कहेंगे। हमारा भाव क्या होता है, जैसे को तैसा मिलना चाहिए, या ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना है, फिर हम सोचते हैं हम क्यों सहन करें। हम अगर सहन कर लेंगे तो हमारी ही गलती मानी चाहिए, हमें ही कमजोर समझा जाएगा, तो हमने गलती की ही नहीं है तो हमें इन्हें बताना है। और इस तरह से कई बार छोटी छोटी बातें विकराल रूप ले लेती हैं, यहां तक कि मनुष्य किसी की हत्या तक कर देते हैं। आए दिन अखबारों में ऐसे समाचार होते हैं। मुझे याद आती है घटना, एक बार जोधपुर के पास एक गांव, यहाँ राजस्थान का ही एक शहर है, वहां पर एक पति को अपनी पत्नी पर शक था और उस बात को लेकर के अक्सर उनमें झगड़ा होता था। तो एक दिन पति घर में आया तो पत्नी नहीं थी और काफी देर के बाद वो लौटी, तो उसको पहले ही शक था, फिर उसी बात को लेकर के उनमें झगड़ा होने लगा और गुस्से में आकर के उसने घर में कुल्हाड़ी थी उससे पत्नी पर वार कर दिया और वो इतना जोर का उसे लगा कि उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उसको होश आया तो उसको समझा कि अब पुलिस आएगी और उसको पकड़ कर ले जाएगी, सब क्या परिणाम होगा, तो उसने खुद के लिए भी एक फंदा बनाया और खुद को लटका दिया और दो बच्चे थे उनके। अब वो बात जो सच है भी या नहीं, जिसका उसे पता ही नहीं है, उसको लेकर के एक पूरा परिवार तबाह हो गया। तो हम यहां तक तो नहीं पहुंचते हैं, ऐसी घटनाएं कोई कोई होती हैं, सोचिए पूरे विश्व में तो हो सकता है ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सहन नहीं कर सकते कोई बात को तो हमें गुस्सा आता है। और गुस्से के लिए कहते हैं क्रोध थोड़े समय का पागलपन है। मनोविज्ञान कहता है एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी। गुस्से में मनुष्य को ये समझ में नहीं आता है, जैसे पागल व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही मनुष्य की स्थिति होती है कि वो ऐसे शब्द बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए, और उसका जो दुख पहुंचता है उसके लिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता है। कहने वाला भूल जाता है लेकिन सुनने वाला उसे नहीं भूल पाता, और उसके कारण संबंधों में दूरी होती जाती है। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जब हम क्रोध में आ जाते हैं। तो अगर हमारी इच्छा अनुसार व्यवहार कोई नहीं करता है या कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हमें गुस्सा आता है। तो यहाँ ज्ञानी व्यक्ति समझता है इस संसार में हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, हर एक का अपना व्यक्तित्व है, अपनी भावनाएं हैं, अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचते हैं, तो हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर अपनी बात कहते हैं तो हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखा गया कि जिनसे आप अपेक्षा करते हैं कि इनको मेरी बात माननी चाहिए, फिर चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके कर्मचारी हैं, आपके साथी हैं, वो 95% से ज्यादा आपकी बात मानते हैं। केवल कभी कभी ऐसा होता है जब वो आपकी बात नहीं मानते क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो आपसे ज्यादा सही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें भी उनकी बात को समझना चाहिए। फिर क्या हम हमेशा दूसरों की इच्छा अनुसार चलते हैं? अगर हम हमेशा दूसरों की इच्छा अनुसार नहीं चलना चाहते तो फिर हम दूसरों से क्यों अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमारी ही इच्छा अनुसार हमेशा चले? तो इसीलिए जब ज्ञान से हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हम दूसरों को भी समझने का पूरा प्रयास करते हैं, और इस तरह से आपसी समझ से क्रोध की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती है। क्रोध का दूसरा कारण कि हमें सबसे काम करवाना पड़ता है, और यदि हमने गुस्सा नहीं किया तो लोग काम नहीं करेंगे। तो क्या गुस्सा करके अच्छा काम हो जाता है? क्या कहेंगे? खासकर भाई जो कार्य क्षेत्र में कार्य करवाते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि गुस्सा नहीं करते तो काम ही नहीं होता है। पर मानो हमने गुस्से से काम कराया तो जिस पर गुस्सा करते हैं वो उस समय आपके भय के कारण या उनको भविष्य का भी भय होता है चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और जो आप करवाना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन वो उस समय दिल से काम नहीं करते। अगर किसी से भी गुस्से से काम कराया जाता है तो वो कभी भी दिल से काम नहीं करेगा और मजबूरी से वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। फिर दूसरी बात, आपके प्रति उसके मन में सम्मान खत्म हो जाता है और वो मन में बदले की भावना रखने लगते हैं और किसी ना किसी अवसर की तलाश में रहते हैं कि जैसे ही उनको अवसर मिलेगा वो आपके लिए समस्या जरूर पैदा करेंगे। तो तात्कालिक परिणाम हमें अच्छे दिखाई देते हैं कि गुस्सा किया तो देखो काम हो गया, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम हमेशा ही बुरे होते हैं। फिर हम अपने लिए सोचें कि क्या हम पर कोई गुस्सा करके काम करवाए तो हमें अच्छा लगेगा? हम सोचते हैं काम तो करना ही है, लेकिन प्यार से भी तो कह सकते थे। वही बात जो गुस्से से कही जाती है, उसी बात को प्यार से भी कहा जा सकता है। तो जो बात हमें अपने लिए पसंद नहीं है, वो हम दूसरों के लिए क्यों करते हैं? फिर माताएं सोचती हैं, घर में बच्चे हैं, बच्चों को अनुशासन में रखना होता है, अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, कहना ही नहीं मानते हैं। गुस्सा करके बोलो तो ही मानते हैं, क्या कहेंगे? तो अगर हम बच्चों पर भी गुस्सा करते हैं तो वो बच्चे भी उस समय आपके भय के कारण आपकी बात मान लेते हैं। आप चाहते हैं वो पढ़े, गुस्से में आके फिर हम क्या बोलते हैं वो हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। आप उसको बोलेंगे नालायक है, बेवकूफ है, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, जो भी हमारे मन में आता है हम उस समय वो शब्द बोलते हैं। वो बच्चे उसे सुनते हैं, आपको खुश करने के लिए किताब खोल करके बैठते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, वो वही सोचते रहते हैं जो पिता या माँ ने कहा है। दो घंटा वो किताब खोलकर बैठे, लेकिन एक भी अक्षर उसे याद नहीं हुआ। लेकिन आप अगर बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं तो उनको समय दीजिए और उनको समझाइए कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए, और अगर कुछ नहीं करना है तो क्यों नहीं करना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं वो हमेशा कारण जानना चाहते हैं कि अगर कोई बात आप उनसे मनवाना चाहते हैं तो वो क्यों ऐसा करें। हमारे पास लेकिन टाइम नहीं होता है समझाने का, या हम खुद ही नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों करें, हमें ही नहीं मालूम होता है। और अगर हम जबरदस्ती उनसे करवाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे सामने विद्रोही बनकर आते हैं। खासकर जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं वो इस रूप में फिर हमारे सामने आते हैं। लेकिन सदा ही बच्चों को आप मित्रवत होकर के एक दोस्त की तरह पेश आइए, और जो भी वो जानना चाहते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करें और उनकी बात भी समझने की कोशिश करें। तो गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वतः ही जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसे ही किसी ने अगर मेरी निंदा की, थोड़ी ग्लानी कर दी, कमी निकाल दी, तो भी हमें उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आता है, हम सहन नहीं कर सकते। पर ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। यह कबीरदास जी ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो क्यों ऐसा कहा, जरूर इसमें कोई राज होगा। उन्होंने क्यों कहा निंदक नीरे राखिए, क्या राज है इसमें? क्यों रहना चाहिए हमारे आसपास जो हमारी कमी बताता रहे हमको? इससे आदमी सुधरता है। यानी अगर हमें ये समझ में आता है, इंसान का ये स्वभाव है कि वो वैसे तो तारीफ सुनना ही पसंद करता है, निंदा सुनना पसंद नहीं करता है, तो उसे अपनी कमी पता नहीं चलती है। दूसरे ही उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, और अगर सचमुच वो मेरे अंदर है 1% भी है तो हम अपने में परिवर्तन लाएं, और लाते हैं तो जीवन में हमारी उन्नति होती है। पर कई बार ऐसा होता है कि सचमुच हमारे में वो कमी नहीं है, किसी को हमारे प्रति गलत फहमी भी हो जाती है। गलत फहमी यानी कई बार ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या की वजह से भी कोई नीचा दिखाना चाहते हैं और आपके बारे में गलत बातें करते हैं, जो सचमुच आप समझते हैं आप ऐसे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसे सुनते हुए भी न सुने, उसका असर हमारे ऊपर, उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं आना चाहिए। कहा गया नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। अगर हम न चाहें तो कोई हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना है कि एक बार एक स्थान पर गए, वहां पर उनका एक विरोधी रहता था और वो इसी अवसर की तलाश में था कि कब मुझे वो महात्मा बुद्ध मिले और मैं अपने मन की बात कहूं। तो जैसे ही उसे मौका मिला, उसने जो भी उसके मन में था वो उसने कहना शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध चुपचाप सुन रहे थे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और जब वो थक गया तो उसने सोचा अभी ये भी कुछ बोलेंगे, हमेशा ऐसे ही होता है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो शांत बैठे थे। तो वो खुद उनके आगे जाकर के उनको कहता, आपने सुना नहीं मैंने आपको क्या कहा? तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा के उसको जवाब दिया कि देखो भाई, अगर आप किसी को कोई चीज देते हैं और अगर सामने वाला उसे नहीं लेता है तो वो कहाँ रहेगी? तो वो समझ गया कि उन्होंने मेरी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया है। तो अगर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो हम उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दें। ऐसे नहीं कि हम भी गुस्सा करने लगे कि हमें भी इसको बताना चाहिए हम कैसे हैं। और हम देखते हैं, आप जैसे यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि एक वृक्ष जब फलों से लद जाता है तो बच्चे उसे पत्थर ही मारते हैं और उसके बदले में वो वृक्ष मीठे फल देता है, यानी पत्थर की चोट सह करके भी वो मीठे फल देता है। तो प्रकृति में भी ये गुण है। तो मनुष्य तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए? चाहे कोई हमसे कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन फिर भी क्या हम उससे अच्छा मधुर व्यवहार कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो समझते हैं कर सकते हैं वो हाथ उठाएं। देखिए ये तो सभी पास हो गए। फिर सिर्फ यहां नहीं, सिर्फ शांतिवन में नहीं, जब वापस अपने स्थानों पर लौटेंगे तो भी इस हाथ को याद रखना कि हमने वहां हाथ उठाया था। हम देखते हैं इतिहास में जितने भी महान पुरुष हुए हैं या जिनको हम धर्म पिता कहते हैं, उनके जीवन की विशेषता थी, वो इसीलिए महान आत्माएं कहलाए कि उन्होंने कभी भी जैसे को तैसा व्यवहार नहीं किया। जैसे ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया तो उन्होंने कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्षमा करने की बात कही, ऐसे नहीं कहा हे पिता तू इन्हें सजा देना, सारी जीवन मैंने इनकी सेवा की और ये मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे ही महात्मा गांधी के जीवन में ऐसे तो अनेक घटनाएं हैं, लेकिन एक विशेष घटना जिन्होंने उसे महात्मा बनाया कि एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और वहां एक युवक चढ़ा जो पान चबा रहा था। हमेशा वो तीसरे दर्जे में सफर करते थे और भारत में तो आप जानते हैं पान चबाने वालों को छुट्टी है, वो कहीं भी थूक सकते हैं। विदेश में लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको फाइन देना पड़ता है, लेकिन भारत में आजादी है। तो जिस डब्बे में वो बैठा था सीट पर, वहां उसने थूक दिया पास में ही। तो महात्मा गांधी आसपास बैठे थे, वो छींटे उनके पैर पर पड़े, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसको चुपचाप पहुंच दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसने थूक दिया, फिर वही हुआ, फिर उन्होंने उसको पहुंच दिया, कुछ कहा नहीं। अब स्टेशन आया तो वहां पर लोग गांधी जी की जय हो नारे लगा रहे थे और जैसे ही वो डिब्बे से उतरे फूल मालाएं उनके गले में डाली गई। अब इस युवक ने देखा कि अच्छा ये गांधी जी हैं, उसने नाम तो सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था, जानता नहीं था। अब उसको याद आया कि उसने थूका है और वो थूक उनके पैर पर पड़ी है और उन्होंने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा, बहुत सहज भाव से उसे लिया। तो उसे महसूस हुआ कि सचमुच ये महान है। तो उसने नारा लगाया भीड़ के साथ, वैसे वो गांधी जी कहलाते थे, पर उसने अपने दिल से कहा महात्मा गांधी की जय हो। तो सभी ने बोलना शुरू कर दिया महात्मा गांधी की जय हो, और उस समय से फिर वो महात्मा कहे जाने लगे। तो अगर वो भी एक साधारण इंसान जैसा व्यवहार करते हैं, अगर कोई हमारे ऊपर किसी की थूक पड़े तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तुरंत शुरू हो जाएंगे, है ना। अगर वो भी ऐसा ही करते तो वो कभी भी उनको महात्मा नहीं कहता। ऐसे ही एक बार नदी के किनारे एक साधु बैठकर ध्यान कर रहे थे अपने शिष्य के साथ, तो वहां मिट्टी जो थी गीली मिट्टी, वहां से एक बिच्छू निकला और उसने उनको डंक मारा। तो जैसे ही उनको दर्द हुआ, उन्होंने हाथ लगाया तो वो बिच्छू हाथ में आ गया। तो उन्होंने बिच्छू को उठाकर थोड़ा दूर कर दिया, कुछ किया नहीं उसको। थोड़ी देर बाद फिर वो चल के वहीं आया और उसने फिर डंक मारा। फिर वो तो पता था अभी, फिर से उन्होंने बिच्छू को हटाया और दूर कर दिया। ऐसे दो तीन बार हुआ और उनके शिष्य ने देखा कि ये गुरु जी क्या कर रहे हैं, बार बार बिच्छू डंक मार रहा है। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी आप क्यों नहीं इसे नदी में फेंक देते हैं, मर जाएगा, आपको बार बार डंक मार रहा है। तो उन्होंने कहा कि डंक मारना इसका स्वभाव है और क्षमा करना मेरा स्वभाव है। अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो ऐसे ही एक ज्ञानी और योगी का जीवन होता है कि हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं वो सभी के प्रति रहम, करुणा, दया और क्षमा की भावनाएं होती हैं। फिर चाहे कोई गलती करे, चाहे कोई कैसा व्यवहार करे, लेकिन फिर भी हम उनके प्रति इन्हीं भाव से व्यवहार करते हैं। वो शक्ति आत्मा के अंदर आ जाती है, वो सहन शक्ति का विकास जीवन में होने लगता है। और आत्मा की जो दूसरी शक्ति है वो है समाने की शक्ति। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हम सुखी होते हैं तो कभी हम दुखी भी होते हैं। कभी अगर हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता भी मिलती है। कभी अगर हमारी स्तुति होती है, प्रशंसा होती है, तो कभी हमारी ग्लानी भी होती है। लेकिन एक योगी निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय, हानि, लाभ, सुख, दुख में समान रहता है। वो संतुलित होता है, स्थिरचित होता है। जैसे इसमें दिखाया है, एक सागर में कितनी ही नदियां आकर समाती हैं, लेकिन सागर अपना किनारा कभी नहीं छोड़ता। और कैसा ही पानी उसमें पड़ता है, कितनी ही गंदगी उसमें होती है, अगर कोई हल्की वस्तु आती है तो लहरें उसे उठाकर बाहर फेंक देती हैं, और अगर कोई भारी वस्तु होती है तो वो सागर के तले में चली जाती है। लेकिन सागर की सतह हमेशा स्वच्छ रहती है। तो ऐसे ही एक साधु व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति का जीवन होता है। और कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही दिए थोथा दे उड़ाए। ये एक साधु का जीवन होता है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप, कि वो व्यर्थ को फेंक देता है और जो उपयोगी अनाज होता है उसे वो रख लेता है। तो ऐसे ही संसार की जो व्यर्थ बातें हैं, उन व्यर्थ बातों को, बुरी बातों को हम देखते हुए भी नहीं देखते, हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। लेकिन जो हमारे लिए उपयोगी है उसे हम अपने जीवन में धारण करते हैं। समाने की शक्ति का दूसरा स्वरूप है, मानो कोई हमारे समीप मित्र हैं, हम पर विश्वास करते हैं, उनकी कोई समस्या है और वो चाहते हैं कि वो हमसे बातचीत कर उसका समाधान कर सके। हमसे वो बातचीत करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत बात है, आप किसी को नहीं कहना। लेकिन हमारा कोई और अपना होता है, उसको हम उनकी वो बात कहते हैं और फिर उनको कहते हैं अब आप किसी को मत कहना। फिर उनका कोई और अपना होता है जिसको वो कहते हैं और फिर ये कहते हैं आप किसी को मत कहना। और ऐसे जो बात फैलनी नहीं चाहिए वो बात फैलती है और घूमते घूमते फिर से उसके पास पहुंचती है जिसकी होती है। अब उसे कैसा महसूस होता है कि मैंने इतना विश्वास इन पर किया और फिर भी मुझे धोखा मिला। तो कई बार इसकी वजह से बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक शिल्पी तीन मूर्तियां लेकर के आया। तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन उसने तीनों के दाम अलग अलग बताए। एक मूर्ति के दाम 100 रुपए थे, दूसरे के 1000 रुपए और तीसरे के 10,000 रुपए। तो राजा को आश्चर्य हुआ, उसने कहा तीनों मूर्तियां एक जैसी हैं, इनके दाम में अंतर क्यों है? तो उसने कहा महाराज ये तीन प्रकार के व्यक्तियों का प्रतीक है, मैं आपको प्रदर्शन करके दिखाता हूं। तो उसने एक तार लिया और पहली मूर्ति के कान में डाला, वो उसके कान से मुंह से बाहर आया। तो उसने कहा महाराज ये एक ऐसा व्यक्ति है जो जो कुछ भी सुनता है वो मन में नहीं रख सकता है, तुरंत बोल देता है। ऐसे व्यक्ति आपके दरबार में नहीं होने चाहिए, आपके दरबार का राज राज नहीं रहेगा, आपको हानि उठानी पड़ेगी। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वो उसके मुख से बाहर नहीं आया, लेकिन दूसरे कान से बाहर आया। तो उसने कहा कि महाराज ये ऐसा व्यक्ति है जो सुनता है फिर बोलता तो नहीं है, लेकिन दोनों कानों के बीच में दिमाग है, तो उसके मन में प्रश्न उठने लगते हैं, ऐसा क्यों कहा, इसका क्या भाव था, यानी ये उलझन में पड़ जाता है। और इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति भी आपके दरबार में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सही समय पर सही निर्णय नहीं कर सकेंगे। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला, फिर कहा वो जो तार था वो उसके पेट में चला गया, ना तो मुख से बाहर आया ना कान से बाहर आया। तो उसने कहा महाराज ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है और विश्वास पात्र है, क्योंकि ये जो भी सुनता है ना तो वो कहता है और ना ही उसके मन में कोई उलझन हलचल होती है, वो जैसे बात समा जाती है, जैसे भोजन पच जाता है और शरीर का ही हिस्सा हो जाता है, ऐसे ही वो बात जैसे उसमें समा गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति आपके दरबार में होने चाहिए। तो एक राजयोगी का जीवन ऐसा होता है कि वो गंभीर होता है, और यदि किसी की कमी है भी सही, हम जानते हुए समझते हुए भी उसका वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन उसे समा सकते हैं। जैसे अपने परिवार के सदस्यों की कमी को हम समाते हैं, और अगर हमें कहीं वो बात कहनी भी है तो जहां जिस स्थान पर जिस व्यक्ति से कहनी है वहीं कहते हैं, सब जगह उसका वर्णन नहीं करते हैं। तो इस तरह से उस समाने की शक्ति से गंभीरता से परिवर्तन आता है। फिर चौथी और पांचवी शक्ति परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। परखने की शक्ति हमें आवश्यक होती है जब हम दुविधा में होते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते ये सही है या गलत है, उचित है अनुचित है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो पहले हमें परखना होता है और फिर निर्णय लेकर के वो कार्य करना होता है। तो जितना ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ता जाता है उतनी हमारी परखने की शक्ति बढ़ती जाती है। आप देखते हैं या जोहरी को दिखाया है, एक जोहरी को आभूषणों की परख होती है कि ये असली सोना है या नकली सोना है, या असली हीरा है, असली रतन है या नकली रतन है, क्योंकि उसे उसका विशेष ज्ञान है। एक साधारण व्यक्ति को उसका विशेष ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन जिसको ज्ञान है वो धोखा नहीं खा सकता। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यापारी ने बहुमूल्य हीरे भेंट किए, तो राजा ने जब हीरों को देखा तो हीरे तो बहुत सुंदर थे, लेकिन उसे शक हुआ कि कोई इतने हीरे इतना सहज रूप से नहीं दे सकता, जरूर ये नकली होंगे। उसको तो समझ नहीं थी, तो उसने अपने दरबारियों को कहा, तो दरबारियों ने कहा कि महाराज हम भी नहीं समझ सकते ये असली हैं या नकली हैं, क्योंकि दिखते तो ये असली ही हैं। तो उसने अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो ये बता देगा ये हीरे असली हैं या नकली हैं उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई नहीं समझ पाया। तो एक फकीर आया, उसने कहा कि महाराज मैं आपको बता सकता हूं ये असली है या नकली है, लेकिन वो अंधा था। तो राजा ने जब उसको देखा कि ये अंधा है तो राजा को आश्चर्य हुआ, उसने कहा तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो उसने कहा महाराज आप मुझे हीरे दे दीजिए, मैं उनको सूर्य के प्रकाश में अलग कर सकता हूं। तो उसने उसको दिए विश्वास करके, और उसने सूर्य के प्रकाश में हीरे रखे। फिर वो एक एक हीरे को अपनी हथेली पर रखता था, और फिर उसके बाद उसने राजा को बताया कि ये सभी हीरे असली हीरे हैं। तो राजा ने कहा तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा महाराज मुझे पता है कि जो असली हीरे हैं वो सूर्य के प्रकाश में गर्म नहीं होते हैं, और ये कोई भी हीरा सूर्य के प्रकाश में गर्म नहीं हुआ, इसलिए ये सभी असली हीरे हैं। तो वो ज्ञान के कारण उसकी वो परखने की शक्ति थी। तो ऐसे ही जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में विकसित होता है तो हम व्यक्ति परिस्थिति को परखने लगते हैं। किसी व्यक्ति को भी देखकर हम समझ सकते हैं, उनके भावों को हम समझ सकते हैं, और उस अनुसार व्यवहार करके हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं जीवन में तो हम सफल होते हैं, लेकिन यदि हम सही निर्णय नहीं ले पाते तो फिर कई बार हमें पश्चाताप करना पड़ता है कि काश उस समय ऐसा कर लिया होता, ऐसा सोचा होता। तो निर्णय शक्ति हमारी तब बढ़ती है, इसमें तराजू दिखाया है, तराजू के तीन भाग होते हैं, एक भाग है उसका कांटा, दूसरा डंडा और तीसरा पलड़ा। सही तौल के लिए कांटा सीधा होना चाहिए, डंडा संतुलित होना चाहिए, पलड़े बराबर होने चाहिए। तो जब हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, मन संतुलित होता है और हम निष्पक्ष भाव से कोई निर्णय लेते हैं तब वो निर्णय सही होते हैं, और योग अभ्यास से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता की शक्ति का विकास होता है। और दूसरी बात, परमपिता परमात्मा के साथ हमारा संबंध होने से उसकी प्रेरणाएं भी हमको प्राप्त होती हैं, और इसीलिए सही निर्णय लेने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि वो ईश्वर की शक्ति भी हमें मिल जाती है और जीवन में हम सही मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। ऐसे ही जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, हमने पहले भी इस विषय में बात की, और जो भी समस्या आती है उसका हमें सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो छोटी समस्या है या बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हम सहज रीति से उसका सामना करते हैं तो हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, हम विजय का अनुभव करते हैं। और यदि हम छोटी परिस्थिति में भी दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हम अशांत रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो इसमें दिखाया है मानो जीवन में किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाती है ना, ये एक साधारण बात है, हम सभी इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो अगर किसी की मृत्यु होती है तो एक ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा ने अगर वो शरीर छोड़ा है तो अब वो नए नाम रूप से जाकर दूसरा जन्म लेगी, और जब तक उसका हमारे साथ कर्म संबंध था वो हमारे साथ थी, अब वो अब आगे की यात्रा के लिए गई है, तो उसके भविष्य जीवन के लिए हम शुभकामनाएं रखते हैं, उसे शांति का दान देते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, ना कि हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो लौट कर आने वाला नहीं है। जो चला गया है वो तो सदा के लिए आत्मा चली गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आज के जीवन में जब हमें ये ज्ञान नहीं होता है तो बहुत दुखी होते हैं कई मनुष्य। मैं एक बार आसाम में गई थी और वहां पर एक परिवार मेरे से मिला किसी कार्यक्रम में। उनके दो जवान बेटे, एक 20 साल का था और दूसरा 25 साल का था, एक कार दुर्घटना में दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। वो इतना दुखी माँ कि कोई दिन, उन्होंने बताया, ऐसा नहीं होता है जब वो रोती नहीं है, क्योंकि निश्चित है जवान बेटे और असमय मृत्यु हो गई। करीब 6 महीने हो चुके थे उनकी मृत्यु हुए उस समय, और इतनी बुरी उसके मन की स्थिति थी, बहुत डिप्रेशन में। और वो जो भाई थे उन्होंने अपने बेटों के गम में दाढ़ी बढ़ा रखी थी, लंबी लंबी, पहचान में भी नहीं आते थे। फिर हमने उनको राय दी कि आप राजयोग का कोर्स कीजिए, और सिर्फ कोर्स तक नहीं, फिर प्रतिदिन आप सेवा केंद्र पर जाकर जो ज्ञान अध्ययन कराया जाता है, जिसे मुरली कहते हैं, वो भी आप सुनिए। तो उन्होंने वो कोर्स किया बाद में, और 6 महीने के बाद उन्हें यहाँ आबू आने का अवसर मिला, और फिर वो हमसे मिले तो अब उनके जीवन में पूरा परिवर्तन था। वो भाई, उनकी दाढ़ी नहीं थी अभी, उनका चेहरा जो था वो हसमुख था। हमने उनसे पूछा, अभी भी आप दुखी हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं बहन जी, अब हमें समझ में आ गया है, और रोज ज्ञान सुनने से अब इतनी शक्ति हमारे अंदर है कि हमने सहज रूप से उस परिस्थिति को पार कर लिया। तो ये परिवर्तन हम महसूस करते हैं कि जिन बातों का सामना हम नहीं कर पा रहे थे पहले, वो प्रतिदिन ज्ञान और योग से शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। फिर दूसरी बात, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अनहोनी जैसी होती है। अचानक बिजनेस डाउन हो जाता है, घाटा हो जाता है, धन की हानि हो जाती है, मानो कहीं चोरी हो गई, या कोई ऐसा रोग शरीर में आ गया जो असाध्य रोग है। ये सब जीवन में चलता रहता है, आए दिन कोई ना कोई समस्या हमारे सामने होती है। तो ज्ञान से हम ये समझते हैं कि अगर कोई परिणाम मेरे सामने आ रहा है तो उसका अवश्य कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता है, क्योंकि हम कर्म की गति को समझते हैं, और इसके कारण हम उसे धैर्य से पार करते हैं कि अवश्य कोई ऐसे मेरे पूर्व कर्म रहे होंगे जिसके कारण ये मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं। और हम ईश्वर को अपने साथ रखते हैं ऐसे समय पर, और महसूस करते हैं कि जब भगवान मेरे साथ हैं तो हम इन्हें सहज रूप से पार कर लेंगे। एक बार महाभारत के युद्ध का ही प्रसंग है कि अर्जुन ने व्रत लिया, ये व्रत लिया कि मैं जयद्रथ को शाम से पहले, माना सूर्यास्त से पहले मार दूंगा, और अगर नहीं मार पाया तो मैं स्वयं जिंदा चिता में जल जाऊंगा, या तो उसको मारूंगा नहीं तो खुद मरूंगा। अब उस रात को जब अगले दिन उसे मारना था, वो आराम से सो रहा था और कृष्ण जो है वो चक्कर काट रहे थे। तो कृष्ण ने देखा कि ये जो अर्जुन है वो तो इतना निश्चिंत सो रहा है, ये कैसे सो सकता है इतना निश्चिंत होकर के। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या बात है अर्जुन, तुम्हें याद नहीं है अपनी प्रतिज्ञा, कल तुम्हें क्या करना है? तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मधुसूदन, जब आप मेरी चिंता कर रहे हैं तो मैं क्यों चिंता करूं, स्वयं भगवान मेरी चिंता कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कौन हमारे साथ है, स्वयं सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, तो हम उसकी चिंता क्यों करें। तो इस तरह से हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। फिर सातवीं शक्ति जो हमें प्राप्त होती है, छठी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है, वो है सहयोग की शक्ति। एक योगी सबका सहयोगी होता है। सहयोग का अर्थ होता है मिलकर कार्य करना। जैसे हम योग कहते हैं, योग माना मिलन, तो जहां मिलकर कार्य करते हैं वो सहयोग होता है। और एक योगी ये समझता है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, हम सब आत्माएं हैं, एक परम पिता परमात्मा की संतान है, एक ही परम धाम से इस सृष्टि पर आए हैं। फिर चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देह के धर्म, जाति, भाषा हैं। आत्मा का धर्म सिर्फ एक शांति, प्रेम और सुख है। तो इस नाते से आत्मा सब भाई भाई हैं और ये पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में होती है। और इसीलिए हम केवल ये नहीं समझते कि चार और छह सदस्यों का परिवार ही मेरा परिवार है और इनके लिए ही मुझे कुछ करना है। नहीं, जिसको भी मेरे सहयोग की आवश्यकता है और यदि हम उसके लिए कर सकते हैं तो हम अवश्य करते हैं। और ये देखा गया कि जहां सहयोग होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक और एक वैसे दो होते हैं, लेकिन सहयोग है तो एक और एक 11 होते हैं। इतनी शक्ति बढ़ जाती है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उसका कारण था कि असुरों को हमेशा ब्रह्मा जी से शिकायत होती थी कि आप देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो वो उनकी शिकायत दूर करना चाहते थे और उनको ये समझाना चाहते थे कि देवताओं में विशेष गुण है। तो उन्होंने एक शर्त रखी भोजन के समय कि उनके हाथ, हाथ माना खास जो कोहनी है, उसे लकड़ी से बांध दिया जाएगा। तो हाथ सीधा रहेगा, कोहनी मुड़ नहीं सकती है, तो भोजन जो है वो मुंह में सीधा नहीं जा सकता। तो पहले असुरों को बिठाया गया, उनके हाथ बांध दिए गए। अब वो कोहनी नहीं मोड़ सकते थे तो कौर मुंह में नहीं जा सकता था। बहुत कोशिश किया लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। आखिर वो थक कर उठ गए, भूख लगी थी लेकिन भोजन नहीं कर सके। फिर उसके बाद देवताओं को बिठाया गया, तो देवताओं ने मन ही मन सोच लिया था कि हाथ बांध दिए जाएंगे तो हम अपना भोजन खुद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम दूसरे को तो खिला सकते हैं, तो हम आमने सामने बैठ जाएंगे। तो सभी देवताएं आमने सामने दो कतार में बैठ गए। तो एक ने दूसरे को खिलाया और सामने वाले ने पहले वाले को खिलाया और इस तरह से उन्होंने भर पेट भोजन किया। तो जो असंभव था वो उनके उस गुण से, सहयोग के गुण से सहज संभव हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर कार्य करते हैं, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ भागवत में ये मिसाल आता है कि जब गोकुल पर संकट था, बहुत बाढ़ आई हुई थी और उसके नष्ट होने का सवाल था, तो कृष्ण ने एक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। तो केवल कृष्ण की उंगली नहीं थी लेकिन सभी गोप गोपियों की एक एक उंगली का उसमें सहयोग था और इतना विशाल पर्वत वो सब अपने सहयोग से उठा सके। तो परमात्मा भी जब इस सृष्टि में परिवर्तन का कार्य करते हैं तो वो कोई जादू मंत्र से संसार का परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ, स्वयं ईश्वर के कर्तव्य के साथ साथ, एक एक आत्मा का भी उसमें सहयोग होता है। और सबसे पहला सहयोग हम अपने परिवर्तन से देते हैं और उसके बाद तन मन धन से हम ईश्वरीय सेवा में जो सहयोग कर सकते हैं, कोई तन से कर सकते हैं, कोई मन से कर सकते हैं, कोई धन से कर सकते हैं, सबके सहयोग से ये जो विशाल कलयुगी पर्वत है, ऐसा हम कहेंगे कि कलयुग कई बार हमें यह असंभव लगता है, इतना बड़ा विश्व क्या सचमुच कलयुग से बदलकर सत्युग हो सकता है? तो जहां सहयोग की शक्ति है वहां पर कुछ भी असंभव नहीं है, सचमुच ये कलयुग बदलकर सत्युग हो सकता है। तो ये सब आत्माओं का सहयोग छुटता है उसमें। और कई बार हम सोचते हैं कि किसी जगह पर कोई थोड़े से लोग क्या इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन जहां हिम्मत है वहां पर भगवान की मदद के साथ साथ सबका सहयोग भी मिलता है। एक बार एक जंगल में आग लगी और जंगल में आग लगते ही सारे जानवर जंगल छोड़कर भागने लगे, लेकिन एक छोटी चिड़िया थी वो जंगल के तालाब पर जाती थी और अपनी चोंच पर पानी लेकर के उस आग पर डाल रही थी। तो जानवरों ने जब देखा तो उसकी हंसी उड़ाई कि चिड़िया तुम क्या समझती हो, तुम्हारे चोंच भर पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा मुझे पता है, इतने कम पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस जंगल की आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो जब हाथियों ने सुना कि ये छोटी सी चिड़िया, इसकी इतनी हिम्मत हो सकती है, हम तो आग बुझा ही सकते हैं, तो उन्होंने तालाब पर जाकर सूंड भर के पानी लाना शुरू किया, आग पर डालना शुरू किया और थोड़े समय में जंगल की आग सचमुच बुझ गई। तो किसने आग बुझाई? तो ऐसे ही हम भी अगर कोई कार्य शुरू करते हैं तो हमें भी सबका सहयोग धीरे धीरे मिलने लगता है। महात्मा गांधी ने भारत की आजादी का संकल्प किया तब वो बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उनके साथ धीरे धीरे पूरा भारत जुड़ गया और सचमुच भारत आजाद हो गया। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब परमात्मा शिव ने इस कार्य का प्रारंभ किया तब ब्रह्मा बाबा भी बिल्कुल अकेले थे, लेकिन आज ये कार्य कितना विशाल रूप ले चुका है और आने वाले भविष्य में सचमुच ये महान परिवर्तन का कार्य सबके सहयोग से सहज संभव हो जाएगा। सातवीं और आठवीं शक्ति जो है वो विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां भी हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। आप देख रहे हैं चित्र में कछुआ है। एक कछुए की विशेषता होती है कि उसके शरीर पर एक खोल होता है और वो बहुत कठोर होता है जिसमें वो सुरक्षित रहता है। जब उसे कुछ खाना होता है तो वो अपने अंग अपने खोल से बाहर निकालता है, खाता है, चलता है, लेकिन जब उसे आराम करना है तो वो अपने अंगों को समेटे रहता है और इस तरह से उसकी सुरक्षा होती है। तो ऐसे ही एक योगी का जीवन होता है कि जब हमें कार्य करना है हम अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करते हैं, आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करती है, अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से कार्य में लगाती है, लेकिन जैसे ही कर्म समाप्त होता है हम अपनी मन बुद्धि को कर्मेंद्रियों से समेट कर आत्मा में स्थित कर लेते हैं। और यहां तक कि हम इस संसार से भी मन को समेट कर परम धाम में स्थित कर सकते हैं जो इस संसार से परे हैं, और संपूर्ण शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्य व्यवहार में आना और नियारा हो जाना ये योगी के जीवन की विशेषता होती है और इसीलिए वो अलिप्त रहता है। कमल फूल समान जीवन होता है, जैसे कमल कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ से न्यारा है। तो हम संसार में रहते हैं लेकिन संसार में रहते हुए भी उसकी बातों के प्रभाव से समय पर न्यारा हो जाना ये शक्ति आत्मा में
आने लगती है। तो जैसे देवी देवताओं का जीवन दिखाते हैं, उनको कमल आसन पर दिखाते हैं, कोई सचमुच कोई देवताएं कमल आसन पर नहीं हो सकते, कमल के फूल में इतनी शक्ति नहीं है कि उस पर कोई खड़ा हो सके या बैठ सके, लेकिन ये उनकी स्थिति का प्रतीक है कि उनका जीवन कमल समान निर्लिप्त है, न्यारा और प्यारा है। तो ये विशेषता जीवन में आने लगती है। और आठवीं शक्ति समेटने की शक्ति, हम सभी जानते हैं कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसीलिए कहते हैं आया है सो जाएगा। पूरा करती हूँ। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, या राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, ऐसे कहते हैं। तो यानी इस संसार में कोई भी शाश्वत नहीं है, सदा काल के लिए नहीं है, लेकिन हम जीवन भर इसे भूले रहते हैं। हम समझते हैं कि हम सदा ही हैं, और इसीलिए मोह माया में मनुष्य सदा रहता है, चाहे वो हमारे संबंध हैं, चाहे वो धन संपत्ति है, उससे मोह मतलब मेरापन रहता है। और फिर उसमें भी तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो समझते हैं मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, जो मेरा है उस पर तो मेरा अधिकार है ही, दूसरे का भी कैसे मेरा हो जाए उस कोशिश में, स्वार्थ जिसे हम कहते हैं दूसरे शब्दों में। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, यानी जो आपका है वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जो है उस पर तो मेरा अधिकार है, ये हम आपको नहीं देंगे। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं न कुछ तेरा और न कुछ मेरा, यानी आध्यात्मिक वृत्ति जिसे कहते हैं कि आपका भी कुछ नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो उस परमात्मा का दिया हुआ है, और हम निमित्त और ट्रस्टी भाव से उसका प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। लेकिन यदि हम उसमें मोह का भाव रखते हैं, तो जैसे कहते हैं कि आत्मा अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाती है, कितनी धन संपत्ति उसने जमा की है क्या कोई अपने साथ ले जाता है? एक पैसा भी, कितना भी मिलियनर क्यों ना हो, एक पैसा भी वो अपने साथ नहीं ले जा सकता है। कोई संबंधी भी आपके साथ नहीं आते, शमशान घाट तक आपको विदाई देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो पूंजी जाती है वो है श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, या हमारे कर्मों की पूंजी हमारे साथ जाती है। अगर हम ज्ञानी हैं तो हम इस बात के महत्व को समझते हैं, और अपना सारा जीवन केवल धन कमाने में या सिर्फ संबंधों में ही नहीं बिता देते, लेकिन हम कुछ समय अपनी आत्मा की उन्नति के लिए भी अवश्य निकालते हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी अवश्य निकालते हैं। वो आत्मा की सच्ची कमाई है, अविनाशी कमाई है, जो उसके साथ जाने वाली है। तो इसलिए हम बहुत विस्तार नहीं करते हैं संबंधों का या अपने बिजनेस का, और सारा समय उसमें ही चला जाए, लेकिन उसको समेटते हुए और अपने मन बुद्धि को भी कंट्रोल में रखते हैं कि हम चाहें तो समय पर अपने मन को फुल स्टॉप दे सकते हैं, और इस तरह से परमात्मा में अपना मन लगा करके उसकी उस शक्तियों को अपने में अनुभव करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो अभी हमारी जो सह प्रशासिका हैं दादी रतन मोहिनी जी, वो हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, और आप सबका विशेष सौभाग्य है कि आप अभी दादी जी से मिलेंगे, इसलिए मैं इस सत्र को जल्दी थोड़ा कम उसमें समाप्त कर रही हूँ। तो जब तक दादी जी आए, तो इस तरह से राजयोगी के जीवन में स्वयं के संस्कारों में परिवर्तन आता है, और हम स्वयं परिवर्तन करके अपने जीवन में भी सुख शांति का अनुभव करते हैं, और दूसरों के लिए भी हम सुखदायी हो जाते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं। और इसके साथ साथ इस महान ईश्वरीय कार्य में भी हम सहयोगी बन जाते हैं। तो आप सभी यहाँ से इस परिवर्तन का संकल्प लेकर के अवश्य जाएंगे। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य प्रशासिका हैं, लेकिन आपका ये आध्यात्मिक जीवन बाल्यकाल से ही प्रारंभ हुआ, जब आप सिर्फ 9 वर्ष की आयु के थे। आप पिता श्री ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आए, उनकी ही आध्यात्मिक पालना में आपका ये जीवन आगे बढ़ा, और जब संस्था माउंट आबू में स्थानांतरित हुई 1950 में, तो 1952 में पहली बार जो प्रतिनिधि मंडल विदेश गया जापान में, जब वर्ल्ड रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस थी, तो दादी जी उन सब सदस्यों में एक थे। तो प्रथम विश्व सेवा की शुरुआत भी आपके द्वारा हुई, और वर्तमान में आप यूथ विंग जो अपनी है उसके चेयरपर्सन हैं, और साथ साथ में जो राजयोग शिक्षिकाएं हैं उन सभी के प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी दादी जी डायरेक्टर हैं, और वर्तमान में संस्था का संपूर्ण प्रशासन उसमें बहुत सक्रिय आपकी भागीदारी है। और हम कहेंगे कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इस विकास यात्रा में, इतने विस्तार में, आप एक बहुत मुख्य आधार स्तंभ रहे हैं।